ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज हम आपको भागवतम के चौथे स्कंध का एक विशेष श्लोक सुनाएंगे। यह 33वां श्लोक 21वें अध्याय से चौथे फोर्थ कैंटो। यूयम्
भजतात्मा
मना वाचा
काया
गुणे
गुणे
कर्म भी अमायना
शब्दार्थ तम उसको एव निश्चय यूयम तुम समस्त नागरिक भजता पूजा करो आत्मा अपना वृत्ति भी वृत्ति परक कार्य का मन मन वच वाणी काया शरीर गुणे विशिष्ट कर्ण गुणों द्वारा स्व अपने अपने कर्मों से अमायना बिना हिचक काम दूध समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अंग्री पंकजं चरण कमल की यथा जिस प्रकार अधिकार सामर्थ्य अवसित अर्थ अपने हित के विषय में पूरी तरह आश्वस्त सिद्धया तुष्टि। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से
भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्ति परक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के श्री भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहो, तब तुम्हें निश्चय ही अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता होगी। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणः कर्मभ्यच, मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इससे चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पृथ्वी महाराज कहते हैं, गुणे स्वकर्म भी। इस पदांश की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाविषा। श्री भगवान द्वारा प्रकृति गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र बनाई गई हैं। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की उपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः वह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य हैं नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने कर्मों को करता हुआ अन्न उपजाकर गौओं की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि शूद्रों के अधिक वृद्धि नहीं होती, अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर इस सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के चार विभाग हैं, सर, हाथ, पैर तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्य के गुणों तथा कर्मों के अनुसार चार श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, श्रमिकों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, हाँ इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र स्वार्थ होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं तो फिर इस श्लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है। इसकी व्याख्या पृथु महाराज ने यथाधिकार शब्द के द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे ना तो ब्राह्मण बनने की आवश्यकता है, ना शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिनकी सामर्थ्य हम सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि गुणों के अनुसार सबसे नीचे स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें दुविधा ना रहे। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग का होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में निम्न स्तर पर स्थान पर होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक ना हो। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपूर्वक कार्य करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है, स्त्रियो वैष्णवस्तदा शूद्र सभी यान्ति परा गतिम। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा पतित स्त्री, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरता पूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम जाता है। भगवान के चरण कमलों को काम दुर्गांग्री पंकज कहा गया है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी रहती हैं और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस श्लोक का अनुवाद हमारे पीछे दोहराइए। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्ति परक कार्य के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के श्री भगवान के चरण कमल की सेवा में संलग्न रहो, तब तुम्हें निश्चय ही अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी।
तमेव यूयं भजतां पृथिवीं मनोवाच काया गुणेषु कर्मभिः वायेन काम दुर्गन्धि पंकजं इदाधिकारा वचितार्थस्थितय। आप सब पृथ्वी महाराज से परिचित हो। पृथ्वी महाराज कौन है? भगवान के शक्तवेश अवतार, भगवान के अवतारों के छह प्रसिद्ध विभाग हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्मथावतार, युगावतार और शक्तवेश अवतार। शक्तेश अवतार के भी दो विभाग हैं, कई बार भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, कई बार भगवान अपने भक्तों को खास शक्ति देते हैं जिनके द्वारा उनके उद्देश्य को सफल बना सके। जैसे जीसस क्राइस्ट के विषय में पापा जी ने कहा था वो शक्ति विषय होता है। तो पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था और जिसमें उनकी पूरी प्रजा उपस्थित थी। तो पृथु महाराज ने सबसे पहले राजा के कर्तव्य का वर्णन किया प्रजा के साथ और राजा ने कहा कि जो राजा या नेता केवल लोगों से कर लेता है और उनका आध्यात्मिक भाव का की चिंता नहीं करता, वो व्यक्ति वो राजा कहाँ जाता है? नरक में जाता है। तो पृथु महाराज इस श्लोक में अभी प्रजा को शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। असल में इस श्लोक और तात्पर्य में हमारा सारा सिद्धांत प्राप्त होता है। अगर आप केवल ये एक श्लोक को ध्यान से पढ़ो और इसके संदेश का पालन करो और तात्पर्य का, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर समाज में सुख शांति चाहिए तो हमें वैसे नेता चाहिए जो अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को समझे। श्रीमद् भागवतर में आप अनेक प्रसिद्ध राजाओं के विषय में पढ़ते हो जिन्होंने ये जिन्होंने प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिनका जो आचरण था वो कुछ शास्त्र पर आधारित। आज आप देखते हो समाज में लोग बेचैन हैं, निराश हैं और आजकल बड़ी चर्चा हो रही है रेप के बारे में, इसके भूमन और अनेक विषयों की चर्चा हो रही है। तो जब तक आप लोगों के हृदय को नहीं सुधारोगे ये पाप के काम रुकेंगे नहीं। आप चाहे पुलिस फोर्स को दुगना कर लो, जब तक आप लोगों के हृदय को नहीं सुधारोगे लोगों का चरित्र सुधरेगा नहीं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहली बार तो उस समय अमेरिका में ड्रग अब्यूज बहुत कॉमन था और अमेरिकन सरकार लाखों डॉलर खर्ची थी लोगों को ड्रग से दूर ले जाने के लिए। तो एक या दो साल बाद एक अमेरिकन सरकार का अधिकारी रापा जी को मिलने आया, उसने कहा हम इतने ही मुश्किल से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अमेरिकन लोग बच्चे ड्रग्स नहीं लें, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग आपके शिष्य तो चाय और कॉफ़ी भी नहीं पी रहे, ठीक है, और जब आपकी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो बड़ी सरलता के साथ ड्रग्स वगैरह छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि ये संभव है केवल अगर आप अपने हृदय को शुद्ध बनाने का प्रयास करोगे। एक समय शिकागो में प्रभुपाद जी शिकागो के पुलिस कमिश्नर के साथ चर्चा कर रहे थे, और पुलिस कमिश्नर कह रहा था शिकागो में अमेरिकन शहरों की तुलना में काफ़ी भारी क्राइम होता था पहले, अब थोड़ा सुधार है। तो वो पुलिस कमिश्नर कह रहा था प्रभुपाद जी को, पूछ रहा था हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ हाई क्राइम। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया जब तक आप हृदय को नहीं शुद्ध बनाओगे आप इन गलत कामों को नहीं रोक सकते। तो अगर हमें समाज में सुख शांति चाहते हैं तो हमें पितु महाराज के श्लोक के संदेश का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं किस प्रकार समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्ण और चार आश्रमों में, पर चाहे आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या वैश्य शूद्र, हम सब का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तो प्रीतम महाराज अपनी प्रजा को क्या उपदेश दे रहे हैं? सबसे पहले वो कह रहे हैं क्या, मन का उपयोग करो किस लिए, भगवान की सेवा में। भक्ति रसामृत सिंधु जिसका वर्णन किसने किया है, रूपा गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी ने कहा कि दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। इस संस्था के हर भक्त को खास करके भक्ति रसामृत सिंधु को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप और सनातन को वृंदावन भेजा था इस आदेश के साथ भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। नवरतम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना में कहते हैं रूप रघुनाथा पते कई भी अकूजी, कब वो शुभ अवसर आएगा जब मुझे रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा। और रूप गोस्वामी के अनेक ग्रंथों में श्री प्रभुपाद जी ने दो ग्रंथों का अनुवाद किया है, एक का नाम है श्री उपदेश रमृत, दूसरे का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी हमें अनेक नियमों का वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रयाग में रूप गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा दी थी, और फिर रूप गोस्वामी जी ने वृंदावन में जाकर उस शिक्षा के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना की। तो भक्ति रसामृत सिंधु जिसको अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से प्रकाशित किया गया है उसमें अनेक नियम हैं, परंतु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं इन सब विधियों का मूल उद्देश्य क्या है कि आप सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलने। तो ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। इसीलिए आप शास्त्रों में बार बार पढ़ते हो इस विषय पर, क्यों, क्योंकि अगर आपका मन वश में हो जाए तो फिर बाकी इंद्रियों को वश में करना ज़्यादा सरल होगा। तो यहाँ प्रीतम महाराज कह रहे हैं मन का उपयोग करो क्या, भगवान की सेवा में। तो मन का उपयोग भगवान की सेवा में आप कैसे करोगे? उदाहरण के लिए भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन लो, और आज टेक्नोलॉजी की सुविधा से आप घर बैठे बैठे भी दर्शन दे सकते हो। इसका एक एक तरह से लाभ है, एक तरह से नुकसान भी है। नुकसान इसी से लोग कहेंगे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता, हम तो इंटरनेट में ही दर्शन ले सकते हैं। मंदिर में क्लास के लिए जाने की क्या आवश्यकता, हम तो इंटरनेट में क्लास हो सकते हैं। तो हर चीज़ का लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो एक है भगवान के आर्य विग्रह का दर्शन, और इंटरनेट की कृपा से आप ना ही आपकी राधिका रमन और कृष्ण बालम जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, जिसका कि मेरे ख्याल से कम 40 मंत्रों के विग्रह का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो यह है एक साधन मन को वश में लाने का। दूसरा, भगवान के उपदेश का स्मरण करो। और इस विषय में भागवतम के प्रथम स्कंद में आप पढ़ते हो, जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो उनके सनातन साथी अर्जुन बड़े दुखी थे, शोक में थे। अर्जुन के लिए भगवान के बिना एक पल भी रहना कठिन था, जैसे कि गोपियों के लिए भगवान के बिना एक पल भी रहने के लिए बड़ा कठिन था। पर फिर अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया। जब गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें क्या लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं उनके साथ उपस्थित हैं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, उसी प्रकार इस संस्था के भक्तों को गीता के श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। और अगर आप गीता के श्लोकों का स्मरण करोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि परम भगवान आपके साथ है। पर स्मरण तो आप जब कर पाओगे अगर आप रोज गीता के श्लोकों का अध्ययन भी करोगे। अगर आप गीता के श्लोकों का अध्ययन नहीं करोगे तो स्मरण कैसे करोगे। फिर भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण करो। जैसे कल से आपके मंदिर में चंदन यात्रा का उत्सव शुरू होने जा रहा है। आप सब इस उत्सव से परिचित हो। ये बड़ा प्राचीन उत्सव है जो आरंभ हुआ था माधवेंद्रपुरी के द्वारा। आज से लगभग 700 साल पूर्व एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। वो थे ईश्वरपुरी के गुरु और ईश्वरपुरी थे चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर लौट रहे थे और यमुना से जगन्नाथपुरी से गोवर्धन। रास्ते में वो रुके कहाँ, यमुना में। कथा लंबी है, मैं केवल कथा का एक अंग का वर्णन कर रहा हूँ। तो रास्ते में कहाँ रुके, यमुना में। तो यमुना में जब रुके तो गोपीनाथ विग्रहा ने माधवेंद्रपुरी को कहा, मैं तुम्हारा भारी हूँ कि तुम आए मेरे लिए चंदन इकट्ठा करने के लिए, पर मेरे में और गोपाल में कोई अंतर नहीं। गोपाल था विग्रह गोवर्धन में। तुम ये चंदन यहाँ ही उपयोग कर लो गोपीनाथ की सेवा में। तो अगले दिन माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों को कहा कि भगवान ने सपने में मुझे कहा है कि ये चंदन गोपीनाथ के लिए उपयोग किया जाए। पुजारी तो बड़े प्रसन्न हो गए। अगर आपके मंदिर में आकर कोई आपको 80 किलो चंदन दे दे तो आप तो खुश हो जाओगे। तो फिर 21 दिनों के लिए माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में रोज गोपीनाथ विग्रह को चंदन से सजाया जाता था। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं और चंदन यात्रा की लीला कल से शुरू होगी। तो भगवान की अनेक लीलाएं और बिल्कुल चंदन यात्रा के थोड़े दिन बाद कौन सा उत्सव होगा, नरसिंह चतुर्दशी। तो फिर भगवान नरसिंहदेव की जी की लीला का स्मरण करना, किस प्रकार भगवान प्रकट हुए, भगवान नरसिंहदेव जी के रूप में अपने भक्त ब्रह्मा के सारे वचनों का पालन करते हुए किस प्रकार उन्होंने इस असुर का वध किया। कौन से असुर का, वैसे तो हम हिरण्यकश्यप को असुर बुलाते हैं, पर वो थे ऊंचे कोटि के भक्त जिनके मन में एक ही भाव था, भगवान की खुशी। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं, इनका स्मरण कीजिए। जब भक्ति सिद्धांत जी पृथ्वी पर थे तो उन्होंने न्यूज़पेपर पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था नदिया प्रकाश। तो एक व्यापारी ने कहा, आप डेली न्यूज़पेपर शुरू कर रहे हो, अब क्या छापोगे इसमें रोज? तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, अगर एक साधारण शहर में तुम 10 अखबार छाप सकते हो रोज, तो भगवान की अनेक लीलाओं के विषय में आप क्यों नहीं प्राप्त छाप सकते? तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, फिर भगवान के गुण, भगवान के नामों का गुणगान, तो किसी न किसी रूप से हमारा प्रयास रहना चाहिए मन द्वारा आध्यात्मिक विषयों का चिंतन करें। और भगवान ने गीता में कहा है, भक्ति योग के पालन से ये संभव हो सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यह संभव है, यह संभव हो सकता है। आगे क्या कहते हैं पितुमना, अपनी वाणी, वाणी का उपयोग करो, किस लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए। भागवतम के 10वें स्कंद में आप पढ़ते हो भगवान की अनेक लीलाओं के विषय में, और आप पढ़ते हो किस प्रकार नारद मुनि ने कुबेर के 2 पुत्रों को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि तुम बन जाओगे एक पेड़, कहाँ? नंदमहाराज के आंगन में। पर साथ में ये वर भी दिया था कि इसके पश्चात 100 देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्तों के वचनों का पूरा पालन करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने इतने वर दिए थे, भगवान ने सब वरों का पालन करते हुए अपने आप को प्रकट किया नरसिंहदेव भगवान के रूप में। तो भगवान को याद था कि नारद मुनि ने श्राप तो दिया नंदकिशोर मणिग्रीव को, पर साथ में एक वर भी दिया। तो देवताओं के 100 वर्ष के पश्चात भगवान के ओखल द्वारा इन 2 पेड़ों को नीचे गिराया। जब ये नीचे पेड़ नीचे गिरे तो पेड़ों से क्या कुमेर के 2 पुत्र निकले। उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों द्वारा भगवान का गुणगान किया। उन्होंने ये गुणगान शुरू किया कहते हुए, अब से हमारी वाणी सदा आपका ही गुणगान करे। तो अज्ञानता में हम सब ने इस वाणी का दुरुपयोग किया है। हम सब इस वाणी का उपयोग कर रहे थे गलत कामों के लिए, पर अब हमें क्या करना चाहिए? वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। तो वाणी का सदुपयोग क्या है? जब आप वाणी का उपयोग करते हो क्या करने के लिए? भगवान के नामों का उच्चारण करने और भगवान की कथा का की चर्चा करने के लिए। तो शब्दों का उपयोग करो किस लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए। कई बार बौद्धिकवादी व्यक्ति पूछते हैं, आप एक ही नामों का उच्चारण दिन रात करते हो, थकते नहीं? आपसे पूछा है किसी ने? खास करके विदेशों में नहीं थकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। आप भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो और आप थकोगे नहीं। अब रोज श्रीमद् भागवतम सुनते हो, कभी आपको ऐसे लगता है कि हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, अब भागवतम नहीं सुनना चाहिए? भागवतम में नारद मुनि उदाहरण देते हैं, जैसे कि रोज सुबह आपको हवा का दरवाजा खोलते ताजापन महसूस होता है। इसी प्रकार भगवान के नाम और भगवान की कथा जितना सुनोगे उतना ही उसका ताजापन महसूस होगा। तो वाणी का जब आप आध्यात्मिक विषय में उपयोग करो तो कहा जाता है आप कृष्णा कथा कर रहे हो। तो कृष्णा कथा करोगे तो किससे बचोगे? प्रजल्पा से। रूपा गोस्वामी जी उपदेश समिति में हमें शिक्षा देते हैं किस प्रकार भक्ति में किस आगे बढ़ सकते हो, किस प्रकार भक्ति नष्ट हो सकती है, क्या कार्य अनुकूल हैं और क्या प्रतिकूल है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान के शरणागत होने के लिए 6 चीज़ों की आवश्यकता है। और सबसे पहले क्या कहा? जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो। तो आज के श्लोक में पृथ्वी महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं क्या कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है। और रूपक गोस्वामी जी ने भी इस विषय का ज्ञान दिया है श्री उपदेश में। और प्रतिकूल के विषय में रूपक गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जो प्रजल्प जो है ये प्रतिकूल है, प्रजल्प द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है। इस विषय में रूपक गोस्वामी जी कहते हैं अत्याहार पर प्रजल्प नियाम का जन संघर्ष लोलियम जल सदवीर भक्ति विनश्यति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है अगर आप प्रजल्प से जुड़ो। और आजकल सेल फोन की सुविधा के कारण प्रजल्प में जुड़ना बड़ा आसान हो गया है ना। पहले तो क्योंकि प्रजल्प आप करोगे तो किसी के साथ करोगे, दीवारों के साथ तो नहीं है। तो अगर कोई आपके साथ है भी नहीं सेल फोन द्वारा बड़े आसानी से हो सकता है। तो सेल फोन का लाभ भी है और नुकसान भी है। तो यहाँ पीतु महाराज क्या कह रहे हैं, भगवान मन द्वारा वाणी द्वारा क्या करो भगवान का गुणगान। और कृष्णा कथा भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान के उपदेश का वर्णन, भगवान का प्रचार करो, भगवान के संदेश दूसरों को पहुँचाओ। अगर आपको बोलने का शौक है तो बोलिए, भगवान का संदेश दीजिए तीर्थ लोगों को। आगे शरीर और अपने कर्तव्यों का परिणाम, ध्येय द्वारा भगवान की सेवा करो। भगवान ने हमें अनेक इंद्रियां दी हैं, इनका उपयोग करो किस लिए, ऋषिकेश की सेवा में। भगवान के अनेक नाम हैं जिनमें एक नाम है ऋषिकेश। और इस विषय में कहा गया है नारद पंचरात्न में सर्वपादी विनिर्मुक्तम तत्पर विना निर्मलम ऋषिकेण सेवनम भक्तिर उच्चते। तो भगवद गीता में भगवान भी ये कहते हैं, समझाते हैं शरीर की क्या तपस्या है, वाणी की क्या तपस्या है और मन की क्या तपस्या है। शरीर की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं अनेक इंद्रियों का उपयोग करो भगवान की सेवा में। और इस विषय में हम भक्तों के सामने किन का उदाहरण है, अमरीश महाराज का। अमरीश महाराज अनेक भक्तों का उदाहरण है, खास करके अमरीश महाराज का, जिसमें आप देखते हो किस प्रकार उन्होंने मन और इंद्रियों का उपयोग किया भगवान की सेवा में। और अमरीश महाराज ने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर चल के जाने में, सिर का उपयोग किया भगवान के सामने झुकने के, जीभ का उपयोग किया भगवान का गुणगान, खानों का उपयोग किया किस लिए भगवान का गुणगान सुनना, जीभ का उपयोग किया किस लिए भगवान का गुणगान और कृष्णा प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जैसे हम कल रात को कह रहे थे जो व्यक्ति कृष्णा प्रसाद नहीं खाए वो क्या खा रहा है, केवल पाप खा रहा है। इसलिए भक्तों का ये नियम रहता है खाएंगे तो क्या कृष्णा प्रसाद खाएंगे, और कृष्णा प्रसाद खाने से अशुद्ध मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पृथ्वीनाथ कह रहे हैं कि शरीर का भी उपयोग करो किस लिए, भगवान की सेवा में। और आगे कह रहे हैं सबको भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। तो इससे हम ये भी देखते हैं कि जो राजा हो या नेता हो उसका केवल ये कर्तव्य नहीं बनता कि किसी प्रकार जो कर ले, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह प्रजा को आध्यात्मिक शिक्षा दे। प्रजा को आध्यात्मिक शिक्षा छोटी आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। इस विषय में भागवतम के साथ स्कंद में प्रहलाद महाराज का उपदेश पढ़ते हो जहाँ उन्होंने कहा कौमन अचरत प्रज्ञ, 5 साल की आयु से यह आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो पृथु महाराज कह रहे हैं सबको भक्ति योग में जुड़ना चाहिए भगवान की सेवा में, और अपनी योग्यता के अनुसार हमें हमारे कार्य का परिणाम को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यहाँ, मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास कोई और योग्यता नहीं है तो पत्र भी मुझे तुलसी का पत्ता भी दोगे उसे मैं स्वीकार करूँगा। तो यहाँ विष्णु महाराज कह रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, तो अगर भगवान ने आपको ज़्यादा शक्ति दी है तो ज़्यादा सेवा कीजिए, और अगर कम शक्ति दी है तो कम कीजिए। पर यहाँ विष्णु महाराज कह रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए और निष्ठा पूर्वक होकर भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए बिना हिचकते हुए। ये नहीं, प्रथम राज स्पष्ट कह रहे हैं कि हम भक्ति में जुड़े प्रसाद में ये सोचते रहें जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। यहाँ हम प्रथम राज स्पष्ट कह रहे हैं पूरी श्रद्धा से पूरे भाव से हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। सर्वधर्मा परिधज महामेकम शरणम व्रज हम तुम सब पापे मोक्षामि मा सुजा। भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो प्रीतु महाराज कह रहे हैं सबको जुड़ना चाहिए बिना किसी रुकावट के भगवान की सेवा, भगवान के चरण कमलों की सेवा में। उसका अर्थ है भगवान की शिक्षा का हमें पालन करना चाहिए, और अगर ये करेंगे तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, बिना शंका के आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो प्रभुपाद जी ने काफ़ी लंबा तात्पर्य दिया है इस महत्वपूर्ण श्लोक के लिए। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि गुणों के आधार पर समाज में विभाजन होना चाहिए, चार वर्ण और चार आश्रम। और इस श्लोक के तात्पर्य में ब्राह्मणों की तुलना की गई है किसके साथ, क्षत्रियों की तुलना की गई किसके साथ, और वैश्यों की पैर के और शूद्रों की पैरों के साथ। तो आगे प्रभुपाद जी इन वर्णों के गुणों का भी वर्णन करते हैं, इन गुणों का इन वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या गुण होना चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, इस विषय का ज्ञान हमें भगवद गीता के 18वें अध्याय में प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के विषय में भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है ब्राह्मणों में ये कई प्रकार के गुण होने चाहिए, शमो दमो तपो सोचम शांति एवं एवचा ज्ञान विज्ञानम अस्तज्ञान ब्रह्म कर्म सफागजम। इस विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मणों को सदा सत्य का उच्चारण करना चाहिए, और सत्य का उच्चारण किससे आरंभ होता है, भगवान की वाणी के द्वारा। ब्राह्मणों को सत्य का उच्चारण करना चाहिए और एक दूसरे के व्यवहार में भी सत्यता का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम मनमानी कार्य करें, झूठ बोलते रहें, कहें हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुणों पर आधारित, चतुर्वर्णम माया गुना कर्मा। जब प्रभुपाद जी ने इसका संस्था की स्थापना की तो जब प्रभुपाद जी भारत में लौटे पहली बार अपने विदेशी शिष्यों के साथ तो वृंदावन में कई गोस्वामियों में ने कहा स्वामी जी ने तो हमारे धर्म की बेइज्जती करा दी, कैसे उन्होंने शूद्रों को ब्राह्मण बना दिया। भक्ति सिद्धांत जी एक समय कलकत्ता के एक ब्राह्मण सभा में उपदेश दे रहे थे, ब्राह्मण के सभा ने निमंत्रण दिया था भक्तिविनोद ठाकुर जी को प्रवचन देने के लिए, पर भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ नहीं जा सके तो उनके बजाय भक्ति सिद्धांत जी गए थे। तो भक्ति सिद्धांत जी ब्राह्मणों की सभा में पहले तो ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा की कि ब्राह्मणों के बिना समाज अधूरा माना जाता है। आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों में भी अनेक स्थानों में पढ़ते हो कि विदाउट ब्राह्मण्स समाज अधूरा है, ब्राह्मण का होना आवश्यक है। जैसे एक शरीर में सिर का होना आवश्यक है, आपने कभी कोई शरीर देखा है सिर के बिना, तो ब्राह्मण का होना भी आवश्यक है। तो पर ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत जी ने पहले तो इस विषय की प्रशंसा की कि ब्राह्मणों के समाज में होना बड़ा आवश्यक है। फिर आगे जाकर उन्होंने श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया कि हम ब्राह्मण बनते हैं गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। इसीलिए इस्कॉन संस्था में पहले तो हरि नाम दीक्षा दी जाती है, तो हरि नाम दीक्षा के पश्चात फिर ब्राह्मण दीक्षा की दी जाती है। नारद मुनि 34 स्कंद में चेतस को उपदेश देते कहते हैं स्वाभाविक व्यक्ति तीन प्रकार के जन्म प्राप्त करता है। पहला जन्म है सवित्र जन्म, पहला जन्म है माता के गर्भ से, फिर है हरि नाम दीक्षा सवित्र जन्म, फिर है जब ब्राह्मण दीक्षा मिलती है या यज्ञ का जन्म। तो इस्कॉन संस्था में ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जब व्यक्ति में कुछ गुण हो, ज्ञान हो और अनुभव किया गया हो कि उनका चरित्र शास्त्र पर आधारित है। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुणों पर आधारित। तो ब्राह्मणों के गुणों में एक गुण ये है वो सत्य का उच्चारण करना। फिर ब्राह्मण को इंद्रियों पर वश होना चाहिए। जो व्यक्ति इंद्रियों पर वश प्राप्त कर ले उसे क्या कहते हैं? गोस्वामी। और जो इंद्रियों का दास रहे उसे क्या कहते हैं? गोदासा। तो आप शायद समझते होंगे गोस्वामी केवल सन्यासियों के लिए, हमारे लिए हम लोग गृहस्थ हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग में सफलता चाहता है उसे मन और इंद्रियों के ऊपर वश लाना चाहिए, तो ही आप भगवत भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गोस्वामी शब्द केवल सन्यासियों के लिए है। गोस्वामी शब्द हम सब के लिए है जो कि मन और इंद्रियों को वश में लाए। फिर सदा सत्य स्वच्छता सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने सहनशीलपन पर बहुत बल दिया है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें केवल 8 श्लोक दिए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? शिष्यार्थ। पहला क्योंकि शिष्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो शिष्यार्थ के 30 श्लोक में महाप्रभु क्या कह रहे हैं? त्रिनादपि तरोरपि अमानिनाम खेतनादि सदा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्णनाथ काविराज कहते हैं ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे गले के साथ जोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हमारी ये उम्मीद है कि हम हरि नाम का उच्चारण करें सदा, कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें, भगवत प्रेम प्राप्त कर सके, तो हमारे विनम्रता का भाव होना चाहिए, दूसरों को आदर देने की इच्छा होनी चाहिए और हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। विनम्रता का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु इसकी तुलना करते हैं एक घास के पत्ते के साथ। आप घास के पत्ते पर चलते हो, वो कुछ कहता है घास पर, तो दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हो। और वृक्ष भी ज़्यादा सहनशील होने के लिए महाप्रभु ने कहा है। पेड़ जो है अत्यंत सहनशील रहता है धूप में। आप तो धूप में या गर्मी में पंखा चला लेते हो, एयर कंडीशनर चला लेते हो, पर पेड़ के पास जो सुविधा है, बारिश में आप अंदर बैठ जाते हो तो पेड़ तो सहता है। तो उससे चैतन्य महाप्रभु ने कहा पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील हो। विनम्रता का एक उदाहरण ये है कि हम शिक्षा लेने को तैयार हैं। आध्यात्मिक जीवन में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं भक्तों के द्वारा, भक्तों के संगत में रहते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर गुरु संतों के द्वारा, गुरु और संत इसको हमें अनेक संत हैं जो प्रचार करें, उनके द्वारा भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। फिर शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों का ऐसा भगवान की वाणी, तो हमें इस शिक्षा को अपनाना चाहिए। यह है विनम्रता। कभी कभी आप देखते हो कि अगर कोई हमें कुछ उपदेश दे तो हम कई बार अपमान महसूस कर लेते हैं हम, पर हमें बड़ी विनम्रता से शिक्षा को अपना लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान इस व्यक्ति के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहा है जीवन को सुधारने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनिश्चेना, और कृष्णनाथ काव्यराज ने कहा ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, हमें सदा इसे इसके संदेश का स्मरण करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हमें गले में बांध कर रखना चाहिए और हमें सहनशील होना चाहिए। भौतिक संसार में अनेक परेशानियां हैं। श्री प्रभुपाद जी के जीवन में भी आप देखते हो कि उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा इस संस्था की स्थापना से पहले। पश्चिम देशों में जाने से पहले प्रभुपाद जी के पास कई समय कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था। एक समय दिल्ली में ही आपके एक मठ में प्रभुपाद जी रह रहे थे, गुड़िया मठ का एक अंग था करोल बाग के, और वहाँ के संतों को लगा कि प्रभुपाद जी बड़े होशियार हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा स्वामी जी आप हमारे आश्रम के लिए बड़े होशियार हो, आप कृपा करके किसी और आश्रम में जाइए। तो प्रभुपाद जी को खोजना पड़ा कोई और स्थान रहने के लिए। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहाँ भी पहले साल बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक समय प्रभुपाद जी रह रहे थे न्यूयॉर्क में एक लॉफ्ट में, लॉफ्ट उसे कहते हैं जहाँ की सामान वगैरह रखा जाता है, और उस लॉफ्ट का मालिक था एक ड्रग एडिक्ट जो ड्रग्स वगैरह लेते रहता था। तो एक दिन रात के 12 बजे या 1 बजे वो नशे में था तो प्रभुपाद जी को मारने आया। तो प्रभुपाद जी को रात के 1 बजे सूटकेस लेकर सड़क में आना पड़ा न्यूयॉर्क शहर के। तो भक्त को अत्यंत सहनशील होना चाहिए। एक समय श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे गीता का अनुवाद किया था अपने हाथों से। शुरू में तो प्रभुपाद जी सारा अनुवाद हाथों से करते थे, फिर जब प्रभुपाद जी दादा दामोदर मंदिर में थे तो उनके पास एक पुराना टाइप राइटर था जिससे वो टाइप करते थे, और जब वो विदेश में गए इसको उनकी स्थापना हुई जब भगवान ने उन्हें अच्छे शिष्य भेजे तो प्रभुपाद जी डिक्टोफोन द्वारा अनुवाद कर रहे थे। पर भगवद गीता का अनुवाद प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से किया था, और वो खोज रहे थे कोई व्यक्ति इस गीता को प्रकाशित करे, दूसरे शब्द में धन के खोज में थे। और उन्हें बड़ी कठिनाई के बाद एक व्यक्ति मिला जिसने कहा स्वामी जी अपना मैनुस्क्रिप्ट दिखाइएगा मुझे। और जब प्रभुपाद जी मैनुस्क्रिप्ट लेने गए घर क्या कहता तो उन्हें पता लगा कि मैनुस्क्रिप्ट रद्दी के रूप में किसने बेच दिया है। तो प्रभुपाद जी ने पूरे गीता का अनुवाद फिर से किया। तो देखिए ये कोई छोटा काम नहीं था, पूरे गीता का अनुवाद फिर से करना। तो भक्त को अत्यंत सहनशील रहना चाहिए, वो ब्राह्मण के गुणों में ये गुण है होना चाहिए सहनशील। फिर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। इसीलिए इस्कॉन मंदिरों में रोज सुबह भागवत का अध्ययन किया जाता है और शाम को गीता। इसके अलावा इस्कॉन केंद्रों में भी अनेक कोर्सेज होते हैं, जैसे आपके पंजाबी भाग में भक्ति शास्त्री का कोर्स हुआ था अंग्रेजी में, और अभी भक्ति शास्त्री का कोर्स हिंदी में भी शुरू होने जा रहा है। तो क्यों इस भावना से कि भक्त इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने बड़े परिश्रम से इन ग्रंथों का अनुवाद किया, केवल इस भावना से नहीं कि हमारे भक्त बांटने जाएंगे, बांटते हो ये बड़ी अच्छी बात है, पर प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें। और जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है तो मुझे इसे योग्यता देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। तो इसलिए आप सबको इस प्रकार का शेड्यूल योजना बनानी चाहिए कि आप रोज इन ग्रंथों का अध्ययन भी कर सको, क्योंकि इन ग्रंथ में है क्या? भगवान की वाणी। भगवान की वाणी के साथ क्या है? महान संतों की व्याख्या। महान संत हमें समझा रहे हैं कि जब भगवान कह रहे हैं तो इसके साथ इसका क्या अर्थ है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, वो साथ में प्रोफेसर होता है, वो टेक्स्ट बुक को समझाता है आपको, है कि नहीं? केवल टेक्स्ट बुक खरीदने से तो आप पास नहीं होते। तो उसी प्रकार महान आचार्य जो हैं वो हमें समझा रहे हैं, जो भगवान ही उपदेश दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो इसके लिए जो भक्त हैं उन्हें उन जो ब्राह्मण हैं उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान हमें सबको होना चाहिए। तो अगर हम भगवतम क्लास सुने, गीता क्लास सुने, तो सुनने के द्वारा भी आध्यात्मिक ज्ञान हमारा पड़ता है, और साथ में हमें पढ़ना भी चाहिए। तो उसी प्रकार क्षत्रियों का भी कर्तव्य बनता है समाज की सुरक्षा, और वैश्यों का क्या कार्य है? उनका कार्य गायों की सुरक्षा करना। सात माता में एक माता है गाय माता, गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस भाव को सब पूरा ध्यान नहीं दे रहे। हमने कुछ दिन समय पहले पढ़ा था, इंडिया हैज बिकम लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इन बीफ। हम तो कितनी शर्म की बात है, आप कुत्ते बिल्ली रख सकते हो और गाय नहीं रख सकते। तो वैश्यों का कर्तव्य बनता है क्या? गायों की सुरक्षा करना। और जिस समाज में गाय की सुरक्षा नहीं हो उस समाज में क्लेश ही क्लेश है। तो वैश्यों का कर्तव्य बनता है गायों की देखभाल करना और खेती बाड़ी करना, व्यापार। और शूद्रों का क्या? इन तीन वर्णों का सहयोग देना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन वर्णों की चर्चा करते हैं, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं पर सबका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में जुड़े। आज आप भारत में देखते हो लोग चर्चा करते हैं ऊंची जाति नीची जाति, है ना? और नीची जाति का हो व्यक्ति तो ज़्यादा सुविधा मिलती है, तो इसलिए कई लोग ऊंची जाति के भी जब बच्चे पैदा होते हैं नीची जाति का नाम लिख देते हैं। पर हमारे शास्त्रों की दृष्टि से ऊंचे जाति का व्यक्ति वो है जो भगवान की सेवा में जुड़ता है। इस संस्था में कोई भेदभाव नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे तो वो चंद्रशेखर भक्त के घर में रह रहे थे। चंद्रशेखर भक्त जो था भौतिक दृष्टि से नीची जाति का था, चैतन्य महाप्रभु थे ब्राह्मण। तो चैतन्य महाप्रभु रहे उसके घर में। क्यों? चंद्रशेखर में एक ही गुण था। क्या गुण था? वो भगवान का उच्च कोटि का भक्त था। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये नहीं देखा कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है। उनके मन में एक ही भाव था, क्या? कौन भगवान का भक्त है कौन भगवान का सेवक है। एक समय चैतन्य महाप्रभु जो पृथ्वी पर थे उनके एक भक्त थे जिनका नाम था सुबुदी रॉय। तो सुबुदी रॉय को उस समय बाहर जो हिंदुओं का समाज था बड़ा खड़क था, नैरो माइंडेड। तो शुरू में सुबुदी रॉय बड़े धनी थे, बड़े जमींदार थे। तो उनके घर में उनके पास एक नौकर था जिसका नाम था हुसैन। तो एक दिन हुसैन ने कुआं खोते हुए गलती की, तो सुबुदी रॉय ने जरा प्रेम से मारा जिसके कारण उनके पीठ में एक निशाना रह गया, और चापलूसी करके हुसैन मालिक बन गया। कई बार आप देखते हो चापलूसी करके नौकर मालिक बन जाता है। तो हुसैन मालिक बन गया, सुबुदी रॉय की सारी संपत्ति हड़प ली। तो एक दिन उसकी पत्नी ने देखा पति के पीठ में एक निशाना था, तो पत्नी ने पूछा, ओ ये निशाना कहाँ से आ गया? तो पति ने कहा, मैं जब छोटा था सुबुदी रॉय के घर में सेवक था, तो एक दिन मैंने गलती की थी तो उसने चाबुक से मारा था जिसकी निशानी है। तो पत्नी ने कहा, अब तो तुम राजा बन गए हो, अब उसे ख़त्म कर दो। मुझे कैसे उसके मार दो, उसने तो मुझे बेटे जैसा पाला था, मैं ये नहीं कर सकता। तो पत्नी ने कहा, कम से कम मुसलमान तो बना दो उसे, उन दिनों में मुसलमान बनना कोई कठिन कार्य नहीं था। अगर आपने मुसलमान के घर में नौकरी कर ली तो मुसलमान हो गए, मुसलमान के घर में पानी पी लिया तो ख़त्म। तो वो प्रभा जी इस भाव का बड़ा विरोध करते हैं। तो हुसैन शाह ने कहा, ठीक है मुसलमान बना दे दो, उसे मुसलमान बना दिया। तो सुबोधी रॉय ने ब्राह्मणों को पूछा, अभी मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अंदर से तो खुश थे, अब मुझे समाज त्याग देगा तो मैं 24 घंटे भजन करूँगा। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में? ब्राह्मणों ने कहा, आपको उबलता हुआ तेल पीकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। फिर से बुद्धि रोय गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पहले ब्राह्मण थे, अभी मुसलमान बन गए। तो महाप्रभु ने कहा, चैंट हरे कृष्णा। सबने कहा आत्महत्या कर लो, महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाओ, वहीं नाम का उच्चारण कर। फिर सुबुद्धि रॉय वृंदावन में आए, जहाँ की उनका छोटा सा धंधा था लकड़ी को मथुरा से वृंदावन लाना, वो जो आमदन होती थी वो लगभग पूरी आमदन खर्चते थे, किस लिए? वैष्णवी विधवाओं की सेवा में। यह है भक्तों का उदाहरण। आप चैतन्य चतुर्मृता में पढ़ते हो, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था खोलवचर श्रीधर। खोलवचर श्रीधर एक साधारण व्यापारी थे, छोटी सी आमदन, वो थोड़ी छोटी आमदन का 50% खर्चते थे गंगा नदी की सेवा के लिए। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा, हे खोलवचर श्रीधर, मांगो मेरे से जो वर चाहिए, तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए। तो खोलवचर श्रीधर ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मैं सदा आपका गुणगान कर सकूं, सदा आपकी संगत में रहूं। तो ये है भक्तों का भाव। तो आज के इस श्लोक में प्रीतु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं क्या, कि अपनी योग्यता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान हर चीज़ के साक्षी हैं, वो जानते हैं आपकी असली योग्यता क्या है। नहीं, हमें योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, डिवोटी सदा प्रसन्न रहता है और उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है, क्योंकि वो रहता है भगवान की सेवा में। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, अन्न की प्राप्ति होती है वर्षक यज्ञ के कारण। यज्ञ का अर्थ है धर्म के नियमों का पालन करना। आज आप समाज में देख रहे हो आवश्यकता दिन पे दिन कम होते जा रही है, लेकिन उनकी प्राप्ति और कठिन होते जा रहा है। जल आपको आसानी से प्राप्त हो रहा है। मुझे कोई कह रहा था कि उसने पढ़ा कि आपका गुड़गांव में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पर यह भविष्यवाणी है कि 4 साल बाद वहाँ पानी नहीं लाएगा। तो पानी आपको लाना पड़ेगा, बड़ी कोठी है वह पानी लाना पड़ेगा। तो आज आप देख रहे हो हर प्रकार की आवश्यकता कठिनाई से प्राप्त हो रही है कि नहीं? उसका कारण क्या है? हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो अगर आप समाज में सुख चाहते हो, अगर आप हर प्रकार की आवश्यकता चाहते हो, जो उपदेश पृथ्वी महाराज आज के श्लोक में दे रहे हैं वो देश को हमें स्वीकार करना चाहिए और इस संदेश को आगे क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जब तक हम इस संदेश को स्वीकार नहीं करेंगे आप असली सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, और क्योंकि वो भगवान की सेवा में है वो हर स्थिति में संतुष्ट है। तो और जब वो अपने शरीर त्यागता है तो कहाँ जाता है, भगवान के धाम। शरीर त्यागता है तो कहाँ जाता है, भगवान के धाम। कई बार लोग सोचते हैं जो व्यक्ति भी शरीर त्याग गया भगवान के धाम जा रहा है, तो इसलिए आप अखबार में भी एडवर्टीजमेंट देखते हो ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोड, वो स्वर्ग चले गया। पर स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। अगर आपने स्वर्ग में जाना है, भगवान के धाम में जाना है, तो भगवान की शिक्षा का पालन आवश्यक है। और आप कहोगे ये जो पृथ्वी महाराज का उपदेश है बड़ा कठिन है पालन करना, पर साधु संगत में रहोगे तो ये संभव है। प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, और अगर आप भक्तों की संगत का लाभ उठाओगे तो आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा सरल हो जाएगा। इसलिए हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये संस्था की स्थापना हुई है इस उद्देश्य के साथ कि हर व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान अनुकूल करने का मौका मिले, और भक्ति के ज्ञान के आधार पर ही आप जीवन को सुखी बना सकते हो और सफल बनाना सकते हो, सफल बना सकते हो। तो आप में से आप सब तैयार हो पृथ्वी महाराज के संदेश का पालन करने के लिए? हाँ सब तैयार हो। तो पृथ्वी महाराज क्या कह रहे हैं जल्दी में, क्या क्या करना चाहिए हमें संक्षेप में? हाँ मन, और आगे वाणी, आगे शरीर, आगे हाँ अपने कर्मों के परिणाम, आगे वो निष्ठापूर्वक बिना हिचके हुए, यानी हम भक्ति करेंगे तो पूरा समर्पण नहीं करेंगे, 10% करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं इस विषय में भगवत गीता में, ये यथम जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आएगा उतनी ही मैं उसको सुरक्षा दूंगा। तो भगवान तो कह रहे हैं पूरे रूप से समर्पण करो, तो पूरे रूप से समर्पण करोगे तो भगवान क्या कहते हैं, कौन थे पद जाने ही न हमें भक्त पद चले। हे अर्जुन तुम पूरे विश्व को ये सूचना दो मैं हम भक्त जो है मैं हमेशा उसकी क्या करूँगा, सुरक्षा करूँगा। तो साधु संघ में हमें शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो साधु संघ में शास्त्रों का अध्ययन कैसे करोगे, क्लास में बैठकर, क्लास में आओ क्लास में बैठो। कभी कभी लोगों की आदत हो जाती है क्लास में नहीं आना, क्लास में आना बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो भक्त मंदिर में रहते हैं उन्हें क्लास में जरूर आना चाहिए। और ये क्लास में क्या है, आपको भगवान का उपदेश सुनने का मौका मिलता है। तो आप सब इस संदेश का लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है, 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं, मुझे गाजियाबाद जाना है।
धन्यवाद महाराज। महाराज पूर्ण शरणागति में अंदर से एक झिझक होती है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं?
हाँ शरणागत होने के लिए झिझक नहीं, सोचें अगर पूरा शरणागत हो जाए तो हमारे पास बचेगा क्या, पर और पूर्ण शरणागत होने की इच्छा कैसे बढ़े, है ना। इस विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं भजन क्रिया के पालन के साथ, अगर हम ध्यान से जाप करेंगे, ध्यान से शास्त्रों को पढ़ेंगे, सेवा भी करेंगे साथ में, तो भगवान के शरणागत होने की इच्छा पड़ेगी। पर अगर हम ध्यान से जाप नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, तो फिर ये भावना तेजी के साथ नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी पर बड़े धीमे धीमे। तो इसलिए सब भक्तों के लिए शरणम कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण है, सब भक्तों के लिए, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ। श्रवणम कीर्तनम के बिना आध्यात्मिक परिवर्तन असंभव है। और जितने ध्यान से करोगे, हरि नाम का लाभ हर स्थिति में है, पर अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें ध्यान से करना चाहिए भगवान के नामों का उच्चारण। आपके भाग गए थे हरिद्वार ग्रंथों का वितरण करने के लिए। कभी कभी हमारे भक्तों में यह भाव रहता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन साल में एक महीना बस, कौन सा महीना, गीता जयंती। पर असल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उत्साह सारे साल रहना चाहिए। विदेशों में हमारे भक्त दिसंबर में मैराथन तो करते हैं, पर वैसे सारा साल मैराथन का भाव रहता है। तो आपके भक्त गए थे हरिद्वार में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में और 2000 गीता पाठ के आए और 4000 छोटी किताबें और साथ में एक चैतन्य चतुर्मुखी लगा सर। आज इस विश्व में सबसे बड़ी कमी है ज्ञान की कमी, और ये ज्ञान कहाँ है, इन आध्यात्मिक ग्रंथों में। कभी कभी हमारे मन में भाव रहता है कि इन ग्रंथों को कोई पढ़ रहा नहीं है, पर जानकर खुशी होगी कि लोग जब लेते हैं तो पढ़ते भी हैं। और सब नहीं भी पढ़ें, 10% लोग भी पढ़ लें तो भक्तों की संख्या बढ़ते जाएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मुझे गाने बजाने ब्राह्मण दीक्षा लोगे तो ठाकुर जी की सेवा भी करनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करना चाहिए, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना चाहिए और प्रचार बढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण को प्रचारक बनना चाहिए, पर इस भावना से नहीं, अभी हम ब्राह्मण दीक्षा ले लिया है, जिनू पहन लिया है तो हमारा हुक्म चलेगा। हमें बड़े विनम्रता से भक्तों की सेवा करनी है। ठीक, so he's quoting a line from the Purport where Prabhupada says, anyone can become?
There is
no duplicity. Duplicity means double talk, hypocrite. You know what's a hypocrite? You say something and you do something else. Hum aapko kehte chant Hare Krishna aur humko jap nahi karte. So this is hypocrisy. हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दोगलापन। तो दोगलापन व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें कुछ और करें कुछ, मुंह में राम राम बगल में छोड़ें, तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चतुर्मिता में कहा गया है कि भक्त का जो आचरण है शास्त्र पर आधारित होना चाहिए और भक्त के व्यवहार से शास्त्रों का संदेश प्रस्तुत होना चाहिए। के हरे कृष्ण। तो आप सब को पता है कि रोहिणी में मंदिर बन रहा है, हाँ, कहाँ है रोहिणी? पहले ये पंजाबी बाग में मंदिर होता था, कौन सी गली में, 63 नंबर में, तो वो छोटा था। तो फिर भगवान कृष्ण बालराम जी ने ये सुंदर स्थान दिया, और फिर ये देखा गया कि ये स्थान भी छोटा है, फिर भगवान ने आपके सेवा के लिए रोहिणी का स्थान दिया। तो ये रोहिणी का मंदिर बन रहा है आप सबके लिए, भगवान की खुशी के लिए आप सबसे निवेदन है, और सब जुड़िए इस सेवा में। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का मंदिर बनाए, भगवान के मंदिर से बनाने में सहयोग दे, उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। सबको भगवान की कृपा चाहिए या नहीं? तो आप सब जुड़िए इस सेवा में। आप सब जुड़े हो रोहिणी प्रोजेक्ट में? कौन कौन जुड़े हो अभी तक,
हाथ खड़ा कीजिए।
सबको जुड़ना चाहिए। फिर जब मंदिर बनेगा आप कह सकते हो हमारी मेहनत से ये मंदिर बना। भगवान को असल में किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, और भगवान आपको भी मौका दे रहे हैं, हमें भी मौका दे रहे हैं क्या उनकी सेवा में जुड़ने में। तो केशव मुरारी प्रभु प्रेसिडेंट हैं रोहिणी मंदिर के, आप सब इनके साथ जुड़िए इस मंदिर को तैयार करने में। सब जुड़ोगे? और जब मंदिर बनना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो होती है किसकी, किसकी, भक्तों की, बाद में, पहले 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 धन की। धन आएगा तो मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा फिर भक्तों का प्रश्न उठेगा, जब मंदिर ही नहीं बनेगा तो भक्तों को काम बिठाओगे, ठीक है ना। प्रभुपाद जी कहते थे हम तो पेड़ के नीचे बैठकर भी भजन कर सकते हैं, पर मंदिर बन रहा है भगवान की खुशी के लिए, और जब मंदिर बनेगा तो हजारों लोग आएंगे भगवान का दर्शन लेने के लिए। जैसे 2 महीने पहले हमने पुणे में खूबसूरत मंदिर का उद्घाटन किया, राष्ट्रपति आए थे, तो अभी पुणे मंदिर में रोज 10 से 12 हजार लोग आते हैं। तो रोहिणी का जो मंदिर है ये भी मेन रोड पर बन रहा है, तो जब बनेगा तो हजारों लोग आएंगे। तो आप रोहिणी के भक्त जुड़े हैं, और आप सब जुड़िए इस मंदिर को सफल बनाने में। हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण। तो हम लोग गोपाल कृष्ण ध्वनि के साथ महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। तो आप सब लोगों के लिए विशेष संदेश भी महाराज ने दिया और बताया कि रोहिणी मंदिर जो है बन रहा है, तो आप सबको सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैराथन में आप सब लोग अपना नींद कम करते हैं, अपना खान पीन कम करते हैं और मैराथन के लिए निकलते हैं डोर टू डोर जाके। पुणे में हमें पता चला था लगभग 40,000 भक्तों ने मिलकर पुणे मंदिर में जो है सहयोग इकट्ठा किया है, और वो मंदिर बहुत जल्दी बन गया। इसी तरह रोहिणी मंदिर भी जो है लगभग उतनी ही लागत से बनने वाला है, और इसमें भी जो है अब भक्तों ने, क्योंकि भक्त लोग थोड़ा धीरे धीरे शुरू कर दें, तो गियर जो है अब दूसरे तीसरे आगे बढ़ चुका है और सभी का जो है सहयोग आना शुरू हो चुका है। तो सभी भक्तों को चाहिए कि वो जितने लोग भी जिनको जानते हैं सभी से भगवान की सेवा के लिए जो है संपर्क करें। और इसका हम लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे कि मैराथन में जब भी हम लोग लोगों के पास जाते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है, 10 के पास जाते हैं तो 5 मना करते हैं, 5 हाँ करते हैं, समझाना पड़ता है। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग खुद ही घर के बाहर देख रहे होते हैं कौन आएगा मंदिर निर्माण के लिए। तो आप सब लोगों को वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है, और सभी लोग जो हैं आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो है मंदिर निर्माण में सहयोग करेगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ सहयोग दें और दूसरे भक्तों को भी जोड़ें ताकि वो इस भव्य मंदिर का निर्माण में सहयोग दे सकें। और जैसे महाराज ने बताया कि 12,000 लोग वहाँ आ रहे हैं सैटरडे संडे, 15,000 लोग लगभग ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में जाते हैं, तो पूरी वेस्ट दिल्ली और आउटर दिल्ली में जो हैं अगर कोई चीज़ देखने की होगी तो वो इस्कॉन टेम्पल होगा, और वहाँ पर भी लगभग 15-20 हज़ार लोग रोज दर्शन के लिए आया करेंगे। और बस महाराज जी का सपना है कि रुके ना किसी भी कारण से, और अभी तक रुका नहीं है, और हम चाहते हैं आगे भी ना रुके। और लगभग तुम्हारे बता रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ संकट हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं
कि इस तरह का कोई संकट ना आए, इसलिए सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए। और 3 साल के अंदर जो है, जबकि मायापुर टेंपल का इनोग्रेशन है, डीटीज अंदर जाएंगे 2016 में, हम चाहते हैं उससे पहले 2015 में राधा माधव पंचतत्व प्रहलाद नरसिंह रोहिणी में आ जाए। हरी तो जो लोग ताली बजा रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं वो सब लोग जो है इसी तरह दोनों हाथों से जो है हरे कृष्ण।
आप भागवत में पढ़ते हो कि एक समय एक औरत सेब बेच रही थी, और सेब बेचते बेचते पहुंच गई भगवान के घर। सेब चाहिए क्या किसी को? तो भगवान आए सेब लेने के लिए, हाथों में थोड़े दाने अन्न के दाने थे। उन दिनों में बार्टर सिस्टम था, अगर आपको कुछ चाहिए था उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। पर उस औरत तक पहुँचने तक खड़े दाने हाथ और साथ सेब के सब गए थे। जब भी उस औरत ने भगवान को देखकर सेब मुफ्त में दे दिए उनकी खूबसूरती को देख कर, और जब मुड़ के देखा तो क्या देखा? सोने के सेब उनकी टोकरी। भगवान को देखकर कोई गरीब नहीं होता। एक समय चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे धूप में, तो एक व्यक्ति लस्सी बेच रहा था, महाप्रभु ने उनकी सारी लस्सी पी ली, पूरा मटका खाली कर दिया। तो उसने कहा पैसे? महाप्रभु ने कहा मेरे पीछे सन्यासी आ रहे हैं, वो पैसा देंगे। तो जब भगवान नित्यानंदा जी पहुँचे तो उसने कहा आपके एक सन्यासी आए थे, वो सारी लस्सी पी गए, मेरा मटका खाली कर दिया और कहा तुम पैसे दोगे। तो भगवान नित्यानंदा ने कहा हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तो उस भक्त ने कहा ठीक है समझ जाओ, ये लस्सी मेरे तरफ से दान थी, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो जब मटका उठाने गया तो इतना भारी था वो उठा नहीं पाया, वो आश्चर्य हो गया। सारी लस्सी तो महाप्रभु ने पी ली थी, मटका तो खाली हो गया था। तो उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाया। फिर उसने देखा अंदर मटके में क्या है, वो देखा तो मटके में क्या था? हीरे मोती और गहने। भगवान को लस्सी दी और उसके बदले में क्या, पूरा मटका भर गया था गहनों के साथ। तो कई बार हम सोचते हैं अगर हम रोहिणी प्रोजेक्ट में दान देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अभी 10 करोड़ है बैंक में, उसको कईयों का हार्ट अटैक हो जाता है कब, तो ये घट जाएगा बैंक बैलेंस। तो आप दोगे भगवान आपके आप भारी होंगे, भगवान देखेंगे हाँ आप अपने कर्मों का नतीजा मेरी सेवा में उपयोग कर रहे हो, और भगवान फिर आपको और कृपा देंगे। तो इस व्यक्ति ने लस्सी दी भगवान को और बदले में उसका पूरा मटका भर गया गहनों के साथ। तो अब आप ये नहीं सोचना ठीक है हम भी 1000 रुपये देते हैं, देखते हैं हमारे घर में कितना गहना है। ये विश्वास रखना चाहिए कि अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो उसमें लाभ भी है और नुकसान नहीं। सब करोगे कोई नहीं प्रोजेक्ट बनाओगे? हरे कृष्ण। एक बुजुर्ग औरत ने, भिखारी ने, मंदिर बनाने के लिए 1 लाख रुपए जमा इकट्ठा किया, और पेपर में आया था एक भिखारी औरत ने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, भीख मांगी, भीख मांग कर इकट्ठा किया किसी और मंदिर को बनाने में। पापा जी कहते थे वी आर प्रोफेशनल बेगर्स। पापा जी कहते थे हम सब क्या हैं? भिखारी हैं। पर हम भीख मांग रहे हैं किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, भगवान के लिए। तो भगवान के लिए भीख मांगना ये तो केवल भाग्यवान भक्तों को ही ये मौका मिलता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग विशेष धन्यवाद एक बार फिर से करेंगे किशोर गोपाल कृष्ण जी का। प्रवचन के तुरंत बाद महाराज जो हैं अब गाज़ियाबाद मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप सब से भक्तों से प्रार्थना है कि आप सब लोग भी
प्रसाद के लिए ऊपर जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।